प्रारंभिक सोहन उपकरणों के निर्माण के लिए दो प्रकार के बटिकाश्म उपयोग में लाए गए थे, एक चिपटे आकार वाले बटिकाश्म, दो गोल आकार वाले बटिकाश्म। चिपटे आकार वाले बटिकाश्मों में फलकीकरण प्रायः चिपटे आधार की ओर से करके कार्यांग का निर्माण किया गया है। फलकीकरण प्रायः एक ही तल से किया गया है और कार्यांग उन्नतोदर अथवा सीधा मिलता है। गोल आकार वाले बटिकाश्म उपकरणों में फलकीकरण बटिकाश्म की मूल सतह की ओर से किया गया है। कार्यांग बनाने के लिए उभय पक्षीय फलकीकरण किया गया है। कार्यांग नतोदर कॉनकेव होता है। गोलाकार बटिकाश्म उपकरणों को चॉपिंग उपकरण प्रायः कहा जाता है। प्रारंभिक सोहन परंपरा में दो प्रकार के क्रोड भी मिलते हैं। इनको कच्छप के आकार के चक्राव लेवावा क्रोट तथा क्लैक्टोनियन क्रोट नाम दिए गए हैं। प्रारंभिक सोहन बटिकाश्म उपकरण सोहन घाटी में अदियाल, खसल कला, चौंतरा आदि से मिले हैं। सिंधु घाटी में खुशालगढ़, मारवत तथा इंजीरा नामक पुरास्थलों से उपकरण प्राप्त हुए हैं। हेलमुट देतेरा तथा टीटी पीटरसन को प्रारंभिक सोहन बटिकाश्म चौपर उपकरणों के साथ साथ कतिपय पुरास्थलों पर प्रथम वेदिका से हैंडएक्स, क्लीवर आदि एस्यूलन परंपरा के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। इनको बटिकाश्म उपकरणों का समकालिक माना जाता है। ये हैंडएक्स उपकरण रावलपिंडी में प्रथम वेदिका से, चौंतरा में द्वितीय वेदिका से, अदियाल में भूतल सरफेस से चक्री के निकट बलबल तथा अटक के समीप स्थित गरियाल नामक स्थान पर द्वितीय वेदिका से प्राप्त हुए थे। गरियाल से एक घिसा हुआ क्लीवर भी प्राप्त हुआ था। सोहन की प्रथम वेदिका से पशुओं के जीवाश्म नहीं मिले थे, इसलिए इसके कालानुक्रम के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी में इस प्रकार के पाषाण उपकरणों के साथ गौर, भैंसा, दरियाई घोड़े, सीधे दांत वाले हाथी तथा घोड़े आदि के जीवाश्म प्राप्त पृष्ठ संख्या 218 हुए थे। इस आधार पर सोहन की प्रथम वेदिका को मध्य प्रातिनूतन काल में निर्मित माना गया है। तृतीय हिमकाल से संबंधित द्वितीय वेदिका सोहन नदी के निक्षेपण क्रिया से निर्मित है। यह वेदिका सोहन के जल स्तर से लगभग 40 मीटर ऊंची है। द्वितीय वेदिका के जमाव के दो भागों में विभाजित किया गया, एक आधारभूत ग्रेवल बेसल गर्वेल, दो पीली डुमट मिट्टी का ग्रेवल येलो सीड ग्रेवल। इन दोनों जमावों में जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं उन्हें अंत सोहन लेट सोहन संस्कृति के अंतर्गत रखा गया है। इस जमाव से हाथी, घोड़ा, मवेशी, ऊंट तथा भेड़िया के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। स्तर क्रम एवं प्रारूप के आधार पर अंत सोहन संस्कृति के उपकरणों को अ एवं ब इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अ वर्ग के उपकरण द्वितीय वेदिका के आधारभूत ग्रेवल से उपलब्ध हुए हैं। तकनीक की दृष्टि से ये उपकरण प्रारंभिक सोहन परंपरा के उपकरणों से अधिक विकसित प्रतीत होते हैं। इनमें फलक उपकरणों की प्रधानता है। फलकों को बनाने के लिए आघात स्थलों का निर्माण प्रायः नहीं किया गया। उपकरणों में पुनर्गण के प्रमाण अपेक्षाकृत कम है। लेवावा तथा क्लेक्टन दोनों परंपराओं के क्रोट इस वर्ग में मिलते हैं। फलकों एवं क्रोडों के अतिरिक्त समानांतर ब्लेड या लंबे आकार के अपेक्षाकृत पतले फलक भी प्राप्त होते हैं। पुटबल के पठार की लोयस मिट्टी के निचले स्तरों से प्राप्त अंत सोहन संस्कृति के उपकरणों को ब वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इस वर्ग के उपकरणों में फलकों तथा ब्लेडों की अधिकता है, जो पूर्ववर्ती अ वर्ग के उपकरणों से संबंधित प्रतीत होते हैं। लगभग आधे से अधिक फलकों में फलकित आघात स्थल मिलते हैं। इस वर्ग के उपकरणों की तुलना तकनीक की दृष्टि से यूरोप के लेवावा उपकरणों से की जा सकती है। अंत सोहन संस्कृति के लेवावा फलक उपकरणों में स्क्रैपरों की संख्या अधिक है। अंत सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाणिक न होकर मध्य पुरापाषाणिक प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें फलकों की प्रमुखता है। सोहन की तृतीय वेदिका तृतीय अंतरहिम काल में नदी के कटाव कार्य से निर्मित है। सोहन के जल स्तर से यह वेदिका 26 मीटर ऊपर है। इस वेदिका के जमाव से किसी प्रकार के पाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी की चतुर्थ वेदिका का निर्माण चतुर्थ हिमकाल में नदी की निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस वेदिका का जमाव गुलाबी रंग की मिट्टी नदी के प्रवाह पथ में लुढ़कने के कारण घिसे हुए पत्थरों तथा बालू से हुआ है। इस वेदिका की ऊंचाई सोहन नदी के जल स्तर से लगभग 12 मीटर है। इस वेदिका के निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र में प्रातिनूतन काल के हिमायनों का अंत हो जाता है। इस वेदिका के जमाव से प्राप्त पाषाण उपकरणों को विकसित सोहन उपकरणों की पृष्ठ संख्या 219। रेखाचित्र 4 सोहन नदी भूतात्विक विभिन्न सोपानों की रूपरेखा दतेरा तथा पीटरसन 1939 के अनुसार विकसित सोहन उपकरणों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें ब्लेड पर बने हुए उपकरणों की प्रधानता है। तकनीक की दृष्टि से ये उपकरण अंत सोहन के उपकरणों से बहुत भिन्न नहीं है, किंतु इनका आकार पहले के उपकरणों की अपेक्षा छोटा है। ये उपकरण भारत के उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों के समकक्ष माने जा सकते हैं। सोहन नदी की पंचम वेदिका का निर्माण नूतन काल होलोसेंस में नदी की निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। यह अंतिम वेदिका सोहन के जल स्तर से 6 मीटर ऊंची है। इस वेदिका के ऊपरी जमाव से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के शिवालिक क्षेत्र में ब्रिटिश पाकिस्तानी और अमेरिकन अध्ययन दलों ने भूतात्विक अनुसंधान किए हैं। सन 1980 और 1983 में ब्रिटिश पुरातत्व मिशन ने पाकिस्तान के शिवालिक क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया है उससे यह संकेत मिला है कि हेलमुत दतेरा तथा टीटी पीटरसन द्वारा प्रस्तुत कश्मीर एवं सोहन घाटी के भूतात्विक एवं पुरातात्विक अनुक्रम में आवश्यक संशोधन जरूरी है। दतेरा तथा पीटरसन द्वारा वर्णित निचली कई वेदिकाएं लोअर टेरेस पुरापाषाण काल के बाद की है, जबकि ऊपरी वेदिकाओं अपर टेरेस का निर्माण हिमायनों से नहीं बल्कि भूतात्विक संवलयन मोड उभार आदि अन्य विवर्तनिक कारणों से हुआ है। पृष्ठ संख्या 220 तालिका नंबर 7 पोतवार के पठार के प्रातिनूतन का सापेक्ष अनुक्रम हिमकाल चतुर्थ हिमकाल भूतात्विक जमाव चतुर्थ वेदिका गुलाबी दूमट सिल्ट देवल जमाव का माध्यम नदीकृत निक्षेपण बाढ़ जनित अवसादन तृतीय अंतर हिमकाल भूतात्विक जमाव तृतीय वेदिका दूमट का पतला जमाव जमाव का माध्यम अपरदन अथवा संवलयन तृतीय हिमकाल भूतात्विक जमाव द्वितीय वेदिका पोतवार की लोयस सिल्ट एवं ग्रेवल जमाव का माध्यम वायु बाढ़ एवं सरोवरीय निक्षेप तृतीय अंतर हिमकाल भूतात्विक जमाव प्रथम वेदिका अथवा ऊपरी वेदिका ग्रेवल द्वितीय हिमकाल भूतात्विक जमाव बोल्डर कांग्लोमरेट जमाव का माध्यम बाढ़ एवं हिमायन युक्त नदीकृत अवसादन प्रथम अंतर हिमकाल भूतात्विक जमाव पिंजर कांग्लोमरेट बालू मिट्टी प्रथम हिमकाल भूतात्विक जमाव ट्रेटर संस्तर का कांग्लोमरेट तथा बालू दतेरा तथा पीटरसन 1943 के अनुसार। एच एम रेंडल तथा आर डी डेनल के अनुसार पोतवार के पठार के शिवालिक जमाव का निर्माण हिमालय के उभार में क्रियाशील दबाव के फलस्वरूप संवलयन फोल्डिंग की प्रक्रिया भूतात्विक अर्थ में त्वरित गति से हुई, जिसके कारण बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट से लेकर महीन सिल तक का बड़ी तेजी से कटाव हुआ, जिसको नदियों नालों ने पहाड़ से बहाकर मैदान में परत दर परत के रूप में जमा कर दिया। इन क्षैतिज परतों पृष्ठ संख्या 221 हॉरिजेंटल लेयर्स पर जब दबाव पड़ा तो ये मुड़ गई और कहीं कहीं पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। ऋतुजन्य अपक्षयन तथा अपरदन की क्रियाओं से के फलस्वरूप इनका कटाव हुआ, इन पर नवीन संस्तरों का निर्माण हुआ। इन क्षैतिज स्तरों में से जब सबसे विस्तृत ले कांग्लोमरेट हैं, जो प्रधानतः चूने के वर्टिकाश्मों पेबल्स शैल खंडों कैबलिस और शिला खंडों बोल्डर्स से निर्मित है। यह जमाव नदियों के द्वारा अपरदन एवं अपने तल को काटने की क्रिया को काफी रोकता है, इसलिए यह नदियों की घाटियों में सोपानों के रूप में दिखलाई पड़ता है। इसी को दतेरा तथा पीटरसन ने संभवतः वेदिकाएं समझ लिया था। लेई कांग्लोमरेट की सतह के ऊपर की पुरापाषाण काल के अधिकांश पुरास्थल स्थित हैं। पुरापाषाणिक मानव ने लेई के नीचे के शिवालिक जमाव से प्राप्त क्वार्जाइट के शैल खंडों को उपकरण निर्माण की सामग्री रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया है। जमावों का सबसे ऊपरी स्तर वायुजनित लोयस की चादर के रूप में फैला हुआ है। लोयस के जमाव के अनेक उप अवस्थाएं फेजेस हैं, जिनके बीच बीच में अल्पकालिक स्थानीय सिल्ट एवं ग्रेवल के जलीय नदीकृत जमाव फ्लूवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। सोहन तथा अन्य नदियों ने इन्हीं जमावों को काटकर अपनी घाटियों का निर्माण किया है। रेखा चित्र 5 पोतवार का पठार शिवालिक एवं उत्तर शिवालिक भूतात्विक जमाव एच एम रेंडल 1985 के अनुसार। पृष्ठ संख्या 222 ब्रिटिश मिशन को सोहन तथा हैंड एक्स परंपरा के उपकरणों से संबंधित पुरास्थलों के अलग अलग अस्तित्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेई एवं लोयस ने आच्छादित शिवालिक कॉन्ग्लोमरेट के ऊपर पुरापाषाण काल के अनेक पुरास्थल खोज निकाले गए हैं, जहां पर चौपर फलक लेवावा फलक सहित ब्लेड क्रोट और यदा कदा हैंडेक्स नवनिर्मित स्थिति में मिले हैं। लेई के जमाव पर तथा उसके ऊपर के लोयस जमाव से प्राप्त पुरापाषाण उपकरण अपेक्षाकृत नवीन बिना घिसे पिटे और ऋतुजन्य अपक्षयन विदरिंग से रहित हैं। लेई के ऊपर के लोयस जमाव में सीमित संख्या में ही उपकरण मिलते हैं। पुरास्थलों का विस्तार की दृष्टि से कई कोटियों में विभाजन किया जा सकता है। छोटे छोटे क्षेत्र से लेकर कई किमी के क्षेत्र में विस्तृत कतिपय पुरास्थल मिले हैं। प्रमुख पुरास्थलों में कशाल कला रिवाद औरंगजेब तथा मोरगा हैं। प्ररूप तथा तकनीक की दृष्टि से उपकरणों को निम्न पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल के विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के हैंडएक्स एवं अन्य उपकरण घिसी हुई अवस्था में है। निम्न पुरापाषाण काल के हैंडएक्स एवं अन्य उपकरण घिसी हुई अवस्था में भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेई के जमावों के नीचे के स्तरों से निकल रहे हैं। संभवतः हैंडएक्स इन जमावों के वलयित होने के पूर्व के काल के हैं। ऐसी संभावना है कि निम्न पुरापाषाणिक उपकरण नदियों की ऊपरी घाटियों से कुछ दूर से हिमालय की तलहटी में आ रहे हैं। लेई के जमाव तथा ऊपर के लोयस जमाव से प्राप्त पाषाण उपकरण अपने निर्माण के बाद कुछ समय के उपरांत संभवतः लोयस से ढक गए। पूरा ध्रुवीय चुंबकत्व स्थिरीकरण मैग्नेटिक पोलैरिटी स्ट्रेटिग्राफी और विखंडन पथ तिथि प्रणाली फिशन ट्रैक डेटिंग के आधार पर उच्च शिवालिक के अवसादन सेडिमेंट्स की तिथियां निर्धारित की गई हैं। हैंड एक्स सहित अन्य उपकरणों के कई प्राप्ति स्थलों का कालानुक्रम 7 लाख से 4 लाख वर्ष के मध्य निर्धारित किया गया है। सन 1983 में ब्रिटिश पुरातात्विक मिशन तथा पाकिस्तान के पुरातत्व और भूतत्व विभागों ने संयुक्त रूप से रिवात में जिन उपकरणों की खोज की है उनकी तिथि पैलियो मैग्नेटिक विधि से 19 लाख वर्ष निर्धारित की गई है भारत गणराज्य के पंजाब तथा हिमाचल प्रदेशों के अंतर्गत स्थित शिवालिक क्षेत्र से अनेक पुरापाषाणिक पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। सतलज बाणगंगा आदि नदियों की घाटियों का भूतात्विक तथा पुरातात्विक अन्वेषण किया गया है। सन 1951 में ओलफ रूफर ने सतलज की सहायक सिरसा की घाटी में हिमाचल प्रदेश के नलगढ़ के पास नदी के दाहिने तट पर स्थित वेदिका से चौपर चौपिंग शैली के निम्न पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज किया था। इसके बाद धरणी सेन ने सिरसा नदी का सर्वेक्षण करके 3 वेदिकाएं प्रतिवेदित किया। प्रथम एवं द्वितीय वेदिकाओं से हल्के रंग के क्वार्टजाइट पर निर्मित पेबल तथा फलक पर पृष्ठ संख्या 223 बने उपकरण मिले। सन 1954 में वाईडी शर्मा ने व्यास की सहायक नदी के तट पर स्थित दौलतपुर नामक पुरास्थल से चौपर चौपिंग परंपरा के उपकरण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तालिका 8 मध्य सोहन घाटी में शिवालिक तथा प्राचीनतम काल के जमाओं का संशोधित कालानुक्रम H.M. रेंडल 1982 के अनुसार भूतात्विक जमाओं सन 1955 में बीबी लाल ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास बाणगंगा की घाटी का सर्वेक्षण किया, जिसके फलस्वरूप गुलेर देहरा घलियारा तथा कांगड़ा नामक पुरास्थल प्रकाश में आए। गुलेर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कांगड़ा पठानकोट राजमार्ग पर कांगड़ा से लगभग 22 किमी की दूरी पर बाणगंगा के दाहिने तट पर स्थित है। गुलेर के निकट बाणगंगा पर 5 वेदिकाएं हैं, जिनमें पृष्ठ संख्या 224 से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वेदिकाओं से क्रमशः 6, 13 तथा 10 उपकरण प्राप्त हुए थे। एक पक्षी चौपर, उभय पक्षी चौपिंग उपकरण, पेबल हैंड एक्स, सामान्य हैंड एक्स, क्रोट तथा फलक उपकरण हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पेबल एवं पेबल फलकों पर किया गया है। देहरा कांगड़ा से दक्षिण पूर्व में कांगड़ा होशियारपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर व्यास नदी में 4 वेदिकाएं हैं, जिनसे 14 पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इनमें से 10 क्लेक्टोनियन फलकों पर बने चौपर हैं। यहाँ से हैंडएक्स आदि नहीं मिले। घलियारा देहरा से होशियारपुर की दिशा में लगभग 6.50 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 4 चौपर तथा 1 पेबल हैंड एक्स प्रतिवेदित है। पाताल गंगा तथा बाणगंगा के संगम पर बसे कांगड़ा से बीबी लाल को पेबल हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। जीसी महापात्र ने होशियारपुर चंडीगढ़ क्षेत्र में पंजाब प्रांत के अंतर्गत शिवालिक पहाड़ियों पर पुरातात्विक अन्वेषण करके 20 एश्युलन पुरास्थल खोज निकाले हैं। एश्युलन उपकरण पठारिक क्षेत्र से तथा सोहन परंपरा के चौपर चौपिंग उपकरण दून अथवा घाटियों के क्षेत्र से मिले हैं। इस प्रकार भारत गणराज्य के शिवालिक क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं वे दतेरा तथा पीटरसन के द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा को आधार बनाकर किए गए हैं, जिनके विषय में पुनः समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिटिश पुरातात्विक मिशन ने पाकिस्तान शिवालिक क्षेत्र से नवीन साक्ष्य ज्ञात किए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत भारत गणराज्य के राजस्थान और गुजरात के प्रांतों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली अरावली की पहाड़ियां राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। अरावली के पश्चिम का भाग मारवाड़ कहलाता है और दक्षिण पूर्वी भाग मेवाड़। यहाँ पर वर्ष भर में औसतन मात्र 400 मिमी वर्षा होती है। जाड़े की ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो गर्मी में अत्यंत तेज गर्मी। यहाँ अनेक प्राकृतिक झीलें हैं किंतु कोई बारहमासी नदी नहीं है। लूनी इस भाग की मुख्य नदी है। सांभर झील खारे पानी की एक विशाल झील है। राजस्थान के पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र जहाँ आज थार का विस्तृत रेगिस्तान है, तृतीयक के अंत तथा चतुर्थक काल के प्रारंभिक काल तक ऐसा नहीं था। इसके पश्चात धीरे धीरे यह क्षेत्र शुष्क होता गया और यहाँ की जल प्रवाह प्रणाली का लोप हो गया। दक्कन कॉलेज के बीएन मिश्र तथा एसएन राजगुरु ने इस क्षेत्र का पुरातात्विक अन्वेषण सन 1980 में किया, जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना अक्षांश 27 डिग्री 20 डिग्री उत्तर देशांतर 74 डिग्री 35 डिग्री पूर्व एक छोटा सा कस्बा है, जिसके दक्षिण की ओर 7 किमी लंबी तथा 2.50 किमी चौड़ी खारे पानी की एक झील है। इस झील के आसपास पृष्ठ संख्या 225 के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक अन्वेषण कार्य मुख्यतः हुए हैं। इन अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप न केवल भूतात्विक जमाव प्रकाश में आए हैं, बल्कि पुरापाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित अनेक पुरास्थल ज्ञात हुए हैं। इस क्षेत्र में भूतात्विक जमावों का जो क्रम ज्ञात हुआ है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 जायल जमाव, 2 अमरपुरा जमाव, 3 डिडवाना जमाव। रेखाचित्र 6 डिडवाना भूतात्विक जमावों की रूपरेखा एसएन राजगुरु 1993 के अनुसार। पृष्ठ संख्या 226। इस 3 भूतात्विक जमावों में सबसे निचला जायल का जमाव है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जायल नामक पुरास्थल के पास इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। इस जमाव में बड़े बड़े शिलाखंड मिलते हैं। इसका मध्य तृतीयक का उत्तर काल लेट टर्टियरी अथवा चतुर्थक का प्रारंभिक काल अर्ली क्वार्टेरनरी निर्धारित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि यह जमाव नदी के तेज प्रवाह के फलस्वरूप हुआ था। अनेक पुरास्थलों पर परीक्षणात्मक उत्खनन के दौरान इस जमाव से एश्युलन पाषाण उपकरण मिले हैं। इस जमाव के बाद के दूसरे जमाव को अमरापुर जमाव नाम दिया गया है। यह महीन चिकनी मिट्टी का अपेक्षाकृत मोटा जमाव 1 मीटर से 40 मीटर है। अमरपुरा जमाव से प्रारंभिक एश्युलन उपकरणों से लेकर मध्य पुरापाषाण काल के परवर्ती काल और प्रारंभिक उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। सिंघी तालाब नामक पुरास्थल पर अमरपुरा जमाव के उत्खनन से क्वार्जाइट तथा क्वार्ज प्रस्तर पर बने हुए प्रारंभिक एश्युलन उपकरण मिले हैं, जिनमें हैंडएक्स बहुपक्षीय उपकरण, पॉलीहेड्रन गोलाब उपकरण, क्रोड फलक एवं वृक्ष क्लीवर है। उपकरण निर्माण के लिए पाषाण सामग्री अरावली की पहाड़ियों और तत्कालीन नदियों के तल से उपलब्ध बटिकास्म पेबल्स के रूप में सुलभ थी। उपकरण नवनिर्मित अवस्था में मिले हैं और ढेर के ढेर स्थान स्थान पर एकत्र मिले हैं। इससे यह इंगित होता है कि एश्युलन मानव तालाबों एवं झीलों के किनारों पर निवास करते थे। अमरपुरा जमाव का कालानुक्रम निर्धारित किया गया है। उष्मादीप्ति तिथि 163,000 प्लस माइनस 21,000 वर्ष है। 3 यूरेनियम अथवा थोरियम तिथियां क्रमशः 12.65 मीटर, 14.25 मीटर एवं 18.60 मीटर गहरे स्तरों से 144,000 प्लस माइनस 12,000 वर्ष, 1,50,000 प्लस माइनस 10,000 वर्ष और 3,90,000 प्लस माइनस 50,000 वर्ष हैं। अमरापुरा जमाव के उत्तरी स्तरों से परवर्ती एश्युलन उपकरण मिले हैं। उदाहरणार्थ डिडवाना के पास स्थित जनकपुरा नामक पुरास्थल से और डिडवाना के उत्तर में स्थित मंगलपुरा तथा जनाना नामक पुरास्थलों से अमरपुरा के उत्तरी स्तरों से मध्य पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं जो 8.90 मीटर से 13.10 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। परवर्ती एश्युलन उपकरणों में सुंदर हैंड एक्स, लेवावा फलक तथा स्क्रेपर मिलते हैं। मध्य पुरापाषाणिक उपकरण महीन कड़ों वाले अच्छे किस्म के क्वार्टजाइट तथा चर्ट पर बने हुए हैं। प्रमुख उपकरण प्रकारों में पार्श्व स्क्रेपर, अंत स्क्रेपर, वाइन, लेवावा फलक तथा ब्लेड उल्लेखनीय हैं। अमरपुरा जमाव में जिस गहराई तक मध्य पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं उसकी तिथि 150,000 वर्ष के लगभग आकी गई है, इसलिए प्रारंभिक एवं पर्वतीय एश्युलन उपकरणों की तिथियां मध्य प्रातिनूतन काल के प्राचीनतर स्तरों में रखी जा सकती हैं। अमरपुरा जमाव से जीवाश्म आदि जैविक पुरावशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। परिणाम स्वरूप एश्युलन पारिस्थितिकी एवं मानव के जीवन निर्वाह के विषय में पृष्ठ संख्या 227 पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है। राजस्थान की जलवायु के विषय में यही कहा जा सकता है कि शुष्कता तथा बालुका स्तूपों के निर्माण ड्यून फॉर्मेशन की प्राचीनता मध्य प्रातिनूतन काल के मध्यवर्ती काल तक जा सकती है। नदियों के समतल मैदान में फ्लड प्लेन्स में जो वायु जनित बालुका स्तूपों और बालू के संस्तरों स्टैंडसीट सेट्स का निर्माण हुआ उसे डिडवाना जमाव नाम दिया गया है। यह जमाव लगभग 20 मीटर मोटा मिलता है जिसमें 5 प्रमुख पुरा मृदा स्तर तथा कंकड़ के 5 से 20 सेमी मोटे लोहे 16 स्तर हैं। ये बालुका स्तूप के निर्माण में रुकावट के द्योतक हैं। डिडवाना जमाव से अनेक ऊष्मादीप्ति रेडियो कार्बन और यूरेनियम तथा अथवा थोरियम तिथियां उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 4,00,000 से 60,000 वर्ष के बीच में इस जमाव का निर्माण हुआ। प्रातिनूतन काल में डिडवाना की झील मीठे पानी वाली थी। इसके पश्चात किसी समय इसका जल शुष्कता के कारण खारा हो गया। इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र की जलवायु एवं बालुका स्तूपों के ऊपर निर्मित झील के तटों पर निवास करने वाले पुरापाषाणिक मानव के संबंध में इस अनुसंधान से उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। राजस्थान का अरावली के दक्षिण पूर्व का पथरीला क्षेत्र मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बेराज, बागन, गंभीरी, कादमली तथा बनास आदि यहाँ की प्रमुख बरसाती नदियाँ हैं जो दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर दिशा में बहती हुई चंबल से में मील चंबल में मिल जाती हैं। चंबल यमुना की दक्षिणी एक प्रमुख सहायक नदी है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में हरा भरा तथा उपजाऊ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरापाषाणिक मानव अरावली के गिरिपथ से दूर ही रहे। समतल मैदानी भाग में अनेक पुरास्थलों से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। एस आर राव एवं बी एन मिश्र ने इस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक अनुसंधान किए हैं। चंबल घाटी में सोनिया एवं भैसोरगढ़ प्रमुख पुरास्थल है जहां से हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, चॉपर, अंडाप तथा अनियमित आकार के पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। गंभीरी, बागन, बेराज, कादमली की घाटियों का बी एन मिश्र ने अन्वेषण किया था जिसके परिणाम स्वरूप एश्युलन परंपरा के हैंडएक्स, क्लीवर, चॉपर, स्क्रेपर तथा क्रोड, फलक, ब्लेड आदि उपकरण मिले हैं जो क्वार्जाइट, क्वार्ज तथा डोलराइट पर निर्मित है। गंभीरी पर स्थित चित्तौड़गढ़ बेराज पर स्थित नागरी उल्लेखनीय पुरास्थल है। अधिकांश पुरास्थलों के उपकरण किंचित मात्र ही घिसे हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि जिन पुरास्थलों पर उपकरण मिले हैं वहीं पर अथवा उन्हीं के पास इन उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग हुआ होगा। गुजरात भारत की पश्चिमी प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान का अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल उत्तर में इसमें विलीन हो जाता है। सह्याद्री, सतपुड़ा तथा अरावली की पर्वतमालाएं उसके सीमांत को स्पर्श करती हैं। गुजरात की प्रमुख पृष्ठ संख्या 228 नदियां साबरमती तथा माही अरावली से निकलकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भी गुजरात में प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गुजरात का मैदानी भाग नदियों द्वारा लाई मिट्टी से बना है। इसमें छोटे छोटे पठार तथा काप मिट्टी की छोटी छोटी घाटियां मिलती हैं। कच्छ का रण एक विस्तृत दलदली मैदान है। गुजरात का पश्चिमी प्रायद्वीप द्वीप सौराष्ट्र कहलाता है। यह पठारी भाग है। इस क्षेत्र में भदर, हिरण तथा कालुबार नामक बरसाती नदियां प्रवाहित होती हैं। साबरमती में आधारभूत ग्रेनाइट के ऊपर प्रातिनूतन काल के तीन भूतात्विक जमाव मिलते हैं। एक ग्रेवल कांग्लोमरेट, दो लाल रंग की कॉप गाद मिट्टी, तीन पीली बलुअर मिट्टी। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैंड एक्स क्लीवर पेबल सतह से युक्त क्रोट तथा फलक आदि साबरमती के ग्रेवल कांग्लोमरेट से प्राप्त हुए हैं। ए आर मराठे ने जूनागढ़ तथा अमरेहा से एस्यूलन उपकरण जमाव खोजे हैं। हड़ोल, पधामली तथा बीरपुर प्रमुख पुरास्थल हैं। ओरसंग नदी की घाटी में स्थित भंदरपुर से मध्य पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं। अलविन को इसी नदी की घाटी में स्थित विशदी नामक पुरास्थल के बालुका स्तूप से उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें क्वार्ट्ज पर बने हुए ब्लेड, ब्यूरीन तथा क्रोट प्रमुख हैं। यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों का पूर्ण अभाव है। सौराष्ट्र काठियावाड़ के पठारी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भदर, हिरण तथा कालुबार के बोल्डर जमा से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं। हिरण नदी में उमरेठी नामक पुरास्थल के ग्रेवल जमा से नवनिर्मित से दिखने वाले तीन एस्यूलन हैंडेक्स मिले हैं। इस क्षेत्र में ग्रेवल जमाव के ऊपर अनेक स्थानों पर तटीय मिलियोलाइट चूने का स्तर मिलता है। मिलियोलाइट के आधार तल की तिथि यूरेनियम विधि से 196,000 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार सौराष्ट्र के एस्यूलन परंपरा के उपकरण 200,000 वर्ष से पुराने हैं और ये मध्य प्रातिनूतन काल से संबंधित माने जा सकते हैं। दक्कन का पठारिक क्षेत्र। दक्कन के पठारिक भाग के अंतर्गत पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक प्रांतों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह ऊबड़ खाबड़ पठारिक क्षेत्र है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। उत्तरी भाग ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा दक्कन ट्रैप से निर्मित है। दक्षिणी भाग ग्रेनाइट युक्त है। दक्कन का पठारिक क्षेत्र पश्चिमी घाट की छाया के अंतर्गत आता है, अतः वर्षा का औसत लगभग 500 मिलीमीटर है। प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। गोदावरी, प्रवरा, भीमा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा तथा घटप्रभा आदि प्रमुख नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अधिकांश पृष्ठ संख्या 229 नदियों में प्रातिनूतन काल की जलोढ़ मिट्टी का मोटा जमाव मिलता है, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के पाषाणिक उपकरण मिलते हैं। रेखाचित्र 7 प्रवरा नदी भूतात्विक जमाव की रूपरेखा गुदरुन कार्निवस 1982 के अनुसार। पृष्ठ संख्या 230 उत्तरी दक्कन में निम्न पुरापाषाणिक पुरास्थल बहुत कम संख्या में है। बेसाल्ट पत्थर का उपकरण निर्माण के लिए एकमात्र उपयोग संभवतः इसके लिए प्रमुख कारण है, क्योंकि बेसाल्ट के उपकरण जहां मिट्टी में दबे हुए नहीं थे वहां ऋतु अपचयन के परिणाम स्वरूप संभवतः विनष्ट हो गए। निवासा, पारी, मेरगांव तथा यसर भदने प्रमुख पुरास्थल हैं। गोदावरी की सहायक प्रवरा के तट पर अहमदनगर जिले में जिला मुख्यालय से 56 किमी उत्तर पूर्व में स्थित निवासा नामक पुरास्थल के प्रातिनूतन काल के प्रथम ग्रेवल जमा से एवेविलन तथा एस्यूलन हैंड एक्स क्लीवर स्क्रेपर क्रोड आदि प्राप्त हुए हैं। मवेशी, हाथी तथा घोड़े के जीवाश्म भी निम्न पुरापाषाणिक उपकरणों के स्तरों के साथ मिले हैं। नेवासा के पश्चिम में गोदावरी के तट पर स्थित गंगापुर नामक पुरास्थल से भी एशुलन उपकरण मिले हैं। इस क्षेत्र का सबसे उल्लेखनीय पुरापाषाणिक पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा एवं चिरकी नाले के संगम पर स्थित चिरकी नेवासा अक्षांश 19 डिग्री 31 इंच उत्तर देशांतर 74 डिग्री 50 इंच पूर्व है। इसकी खोज का श्रेय सुश्री गुरुदन गुदरुन कार्निवस को है, जिसने यहाँ पर सन 1966 से 1969 के मध्य उत्खनन कराया था। ट्रैप बेसाल्ट की आधारशिला पर शिलाखंड से निर्मित 20 से 40 सेंटीमीटर मोटे संस्तर से एशुलन उपकरण मिले, जिसकी 74 मीटर क्षेत्र में खुदाई की गई। इसके ऊपर मोटी बालू का 8 मीटर मोटा जमाव था, जिसमें मध्य पुरापाषाणिक उपकरण एवं उच्च प्रातिनूतन काल के पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। चिरकी निवासा के उत्खनन से 2407 पाषाण उपकरण प्रकाश में आए, जो पूर्ण निर्मित, अर्ध निर्मित एवं निर्मीयमाण अवस्था में थे। कतिपय उपकरणों को छोड़कर अधिकांश अच्छे किस्म के डोलराइट पर बने हुए हैं। उपकरणों की नवीनता, विविधता, अधिकता तथा उपकरण निर्माण से संबद्ध सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पुरास्थल एशुलन उपकरण निर्माण का कार्यस्थल वर्कशॉप था। पाषाणिक पुरावशेषों से में पूर्ण निर्मित उपकरणों का प्रतिशत 62.73% है। शेष विविध आकार प्रकार के क्रोड तथा फलक है। उपकरणों को एक पेबल उपकरण तथा दो फलक उपकरण, इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के उपकरणों में हैंडएक्स, एक पक्षीय, उभय पक्षी तथा बहुपक्षी चौपर, गोलाभ उपकरण, स्फेराइड, प्रस्तर हथौड़ा, हैमरस्टोन, क्रोड आदि हैं। फलक वर्ग में हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, गणित फलक, अपशिष्ट फलक, पार्श्व फलक आदि हैं। पूर्ण निर्मित 1510 उपकरणों में से 8,876 58% पेबल पर बने हैं। इनमें 330 37.67% हैंडएक्स हैं और 546 62.33% चौपर, बहुपक्षी उपकरण एवं अन्य क्रोड उपकरण हैं। हैंडएक्स एवं क्लीवर दोनों मिलकर पूर्ण निर्मित उपकरणों का 59.47% है। क्रोड उपकरणों की अधिकता पाषाण हथौड़ा तकनीक के उपयोग की प्रमुखता तथा लेवावा तकनीक के अभाव के आधार पर चिरकी निवासा के उपकरणों को प्रारंभिक एशुलन वर्ग में रखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 231। बोरी पुरापाषाण काल में से संबंधित महाराष्ट्र का एक अत्यंत उल्लेखनीय पुरास्थल है। यह पुणे जिले की जुन्नर तहसील में पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुणे से लगभग 88 किमी की दूरी पर कुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज का श्रेय दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के पुराविदों की है। उन्होंने 17 अगस्त 1987 में इसकी खोज किया था। कुकड़ी नदी के किनारे पर बोरी में ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमाव वॉल्केनिक एस डिपॉजिट मिला है। राख के इस जमाव के ऊपर तथा नीचे पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण मिले हैं। पोटेशियम आर्गन तिथि विधि से ज्वालामुखी के राख के जमाव की तिथि 13 लाख वर्ष आकी गई है। अभी इसकी पुष्टि अन्य विधियों से ज्ञात तिथि से नहीं हो पाई है। रेखा चित्र 8, कुकड़ी नदी भूतात्विक जमायों की रूपरेखा, रवि कोरी सत्तार 1989 के अनुसार। पृष्ठ संख्या 232। दक्कन कॉलेज कॉलेज के पुरातत्ववेत्ताओं के दल ने इसके महत्व को देखते हुए बोरी और उसे आसपास के क्षेत्रों का सघन पुरातात्विक अन्वेषण किया, जिसके फलस्वरूप नीम गांव तथा पिंपलवाड़ी गांवों के बीच में स्थित क्षेत्र में 5 पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। इनमें से बोरी का चतुर्थ क्षेत्र लोकेलिटी 4th सबसे महत्वपूर्ण है। इस अन्वेषण से यह ज्ञात हुआ है कि कुकड़ी नदी के किनारे किनारे लगभग 8 वर्ग किमी के क्षेत्र में ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई राख का जमाव है। राख का यह जमाव कहीं कहीं पर लगभग 2 मीटर मोटा है, अन्यत्र यह 50 सेंटीमीटर से कम मोटा है। ज्वालामुखी की राख का रंग सफेद होता है, जिसके कारण खुरदुरे होते हैं। इस जमाव के ऊपर किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं हैं। इस पुरास्थल के अन्वेषण के फलस्वरूप 3 चौपर, 3 पॉलीहेड्रन, 6 उभयमुखी कुल्हाड़ियां, 1 हैंड एक्स तथा 140 फलक मिले हैं। राख के जमाव के नीचे से 3 पाषाण उपकरण तथा राख के ऊपर के स्तरों से अश्युलन परंपरा के उपकरण मिले हैं, जिससे यह इंगित होता है कि जिस समय ज्वालामुखी की राख का जमा हो रहा था, उस समय बोरी के इस क्षेत्र में मानव निवास कर रहा था। पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए बेसाल्ट तथा डोलेराइट नामक पत्थरों का उपयोग किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के एसके सौमेयजुलू तथा टीआर वेंकटेशन ने पोटेशियम आर्गन विधि से बोरी में ज्वालामुखी उद्गार से निकली राख के नमूनों को का विश्लेषण तिथि निर्धारण के लिए किया। इस परीक्षण के फलस्वरूप बोरी की ज्वालामुखी की राख के जमाव का समय 1,300,000 वर्ष निर्धारित किया गया है। जर्मनी में पोटेशियम आर्गन विधि से इसकी तिथि 538,000 डी प्लस माइनस 47,000 आई है। फिशन ट्रैक विधि से यह तिथि 60,40,000 प्लस माइनस 2,90,000 निर्धारित की गई है। इस प्रकार बोरी की तिथि बहुत पुरानी न होकर नवीन आ रही है। तिथियों में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है। विभिन्न विधियों से ज्ञात तिथियों में विसंगति को देखते हुए तिथि क्रम की नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि भारत में ज्वालामुखी की राख कहां से उड़कर आई होगी। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सुमात्रा से आई थी। सुमात्रा में ज्वालामुखी का कुंड है, जिसमें लगभग 3 बार समय समय पर उद्गार हुए। भूतत्ववेत्ताओं द्वारा ज्वालामुखी के नवीनतम उद्गार से इस राख के जमाव का संबंध बतलाया जाता है। पृष्ठ संख्या 233 दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से रखा गया है। इस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक पठारी भाग, दूसरा तटीय मैदानी भाग। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग 196, विशेषकर पश्चिमी भाग 196 पठारी है। तटीय भाग पठारी भाग के पूर्व दिशा में है, जो उत्तर में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे फैला है। पश्चिमी घाट के अपेक्षा पूर्वी घाट नीचे है और तट से समुद्र कुछ दूर है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग सरकार तथा दक्षिण भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। पठारी भाग में वर्षा कम होती है और जलवायु विषम है, जबकि तटीय भाग की जलवायु सम है। इस दक्षिणी क्षेत्र में गर्मी तथा जाड़ा दोनों ऋतुओं में बरसात होती है, किंतु अधिकतर पानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में बरसता है। गोदावरी, कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, पेन्नार तथा कावेरी आदि प्रमुख नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर को प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। रेखाचित्र 9 हुड़सगी भूतात्विक जमाव की रूपरेखा के पद्दया 1982 के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र के अर्ध शुष्क क्षेत्र में एस्युलन उपकरण कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा तथा तुंगभद्रा के जलोढ़ जमावों में मिले हैं। इनमें कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित अनागबाड़ी तथा गुलबर्गा जिले में स्थित हुड़सगी नामक पुरास्थलों पर उत्खनन किया गया है, जो एस्युलन प्रवासों स्थलों तथा उपकरण निर्माण को तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। आंगनबाड़ी अक्षांश 16 डिग्री 15 इंच उत्तर देशांतर 75 डिग्री 40 इंच पूर्व एक बरसाती नाले के तट पर स्थित है, जो कर्नाटक की बीजपुर जिले में घटप्रभा नदी में मिल जाता है। अपरदी लेटराइट के ऊपर स्थित 40 से 60 सेमी मोटे ग्रेवल जमाव से एस्युलन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सीमित पैमाने पर जो उत्खनन संपादित किया गया है, उससे 50 सेमी मोटे पूरे जमाव में एस्युलन उपकरण मिले हैं। चित्र 10 हुड़सगी हैंडएक्स पाषाण उपकरण के पद्दया पृष्ठ 1982 के सौजन्य से। दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कृष्णा नदी में मिलने वाले हुड़सगी तथा बैचबल नामक बरसाती नालों के तटों पर स्थित है। यहाँ पर दक्कन कॉलेज के पद्दया विगत दशकों के अनुसंधान में संलग्न है। लगभग 10 से 35 सेमी मोटे एस्युलन ग्रेवल जमाव के ऊपर 70 सेमी मोटा दूसरा जमाव है। यहाँ पर 40 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो उत्खनन कार्य हुआ है, उससे एस्युलन कार्यस्थल का फर्श प्रकाश में आया है। इसमें 5 सेमी से लेकर 1 मीटर व्यास वाले ग्रेनाइट पत्थर के जो शिलाखंड मिले हैं, वे एक अंडाकार निर्माण का संकेत देते हैं। एस्युलन उपकरण मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्मित है। उपकरण निर्माण के लिए उपयुक्त पत्थर नाले के तल तथा समीपवर्ती पठार में सहज प्राप्य है। प्रमुख उपकरण प्रकारों में क्लीवर, हैंड एक्स, स्क्रेपर, नाइफ, बहुपक्षी उपकरण, चॉपर, पिक आदि उल्लेखनीय हैं। के पद्दया तथा एम पृष्ठ संख्या 235, डी पिन्ना, एमडी पेत्रागलिया ने अधिवास प्रक्रिया के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। क्रोड उपकरणों की अधिकता तथा प्रस्तर हथौड़ा तकनीक के उपयोग के आधार पर इसको प्रारंभिक एस्युलन परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। चित्र 11 हुड़सगी क्लीवर के पद्दया 1982 के सौजन्य से। तमिलनाडु से ही भारतीय प्रागैतिहासिक अनुसंधान की उस समय शुरुआत हुई जब 13 मई सन 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम में एक क्लीवर खोजा था। विलियम किंग ने 28 सितंबर 1864 में अति रम पक्कम नाले से दो सुंदर हैंडएक्स खोजे थे। इसके पश्चात एले कमियाडे ने पाषाण उपकरण इकट्ठा किए, जिनकी विवेचना 1930 तथा 1932 में एसी बर्किट ने किया। अन्य पुराविदों में वीडी कृष्ण स्वामी, आरवी जोशी तथा केडी बनर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने तमिलनाडु में अन्वेषण किया। केडी बनर्जी ने तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा का 1962 से 63 तथा 1963 से 64 में उत्खनन कराया, किंतु विस्तृत विवरण अप्रकाशित है। कोर्तलयार नदी में 3 वेदिकाओं के विषय में साक्ष्य मिले हैं। अपरदी लेटराइट के जमाव से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण कई पुरास्थलों से मिले हैं। प्रमुख उपकरणों में हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं, जो क्वार्जाइट पर बने हुए मिले हैं। पृष्ठ संख्या 236। आंध्र प्रदेश में प्रागैतिहासिक अनुसंधान सन 1930 से प्रारंभ हुआ, जब एले कमियाडे के कार्य के विषय में एमसी बर्किट ने विवेचन प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात आंध्र प्रदेश में एन आइजक, एमएल के मूर्ति तथा के थिम्बोरेड्डी आदि ने जो प्रागैतिहासिक अन्वेषण किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्रतिवेदित हुए हैं। कर्नूल, चित्तूर, नागार्जुन कोंडा, नलकोंडा, कडप्पा, नेल्लौर, प्रकाशम, महबूब नगर आदि जिलों में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्रतिवेदित हैं। उपकरण निर्माण के लिए मुख्यतः क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, चॉपर, क्रोट, फलक आदि प्रमुख उपकरण है। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा को सम्मिलित किया गया है। बिहार का उत्तरी भाग गंगा तथा उसकी सहायक घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से निर्मित समतल मैदान है। इस भाग में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरावशेष अभी तक नहीं मिले हैं। दक्षिणी बिहार मुख्यतः पठारी है। छोटा नागपुर का पठार इसी भाग में है। बिहार का पठारी भाग पाषाण काल संबंधी अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी बंगाल के थोड़े से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर जो छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, शेष समतल मैदान है जो नदियां द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तरी भाग हिमालय पर्वत में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। उड़ीसा का पूर्वी तटीय क्षेत्र समतल मैदान है। यह नदियों के डेल्टाई जमायों से निर्मित है। पश्चिमी भाग पठारी है जिसमें उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ियां फैली हुई हैं। इस भाग में सुवर्ण रेखा, बुढ़ावलंग, वैतरणी, ब्राह्मणी तथा महानदी प्रमुख नदियां हैं। इसमें महानदी सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण है। नदियों ने पहाड़ियों तथा पठारों को घिस-घिसकर घाटियां बना लिया है। प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से उड़ीसा का पठारी भाग महत्वपूर्ण है। बिहार के मुंगेर, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम तथा राजगीर जिलों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्रतिवेदित हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम एवं मेदनीपुर से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं। एनके बोस तथा धरणी सेन ने मयूरभंज जिले में बुढ़ावलंग नदी का सर्वेक्षण सन 1950 से 1957 के बीच में निम्न पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज की दृष्टि से किया था। क्वार्टजाइट पर बने हुए हैंडेक्स क्रेपर पॉइंट यहां से मिले हैं। अशोक घोष ने बंगाल में महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। उड़ीसा में जीसी महापात्र तथा आरपी पांडे ने उल्लेखनीय प्रागैतिहासिक अनुसंधान किए हैं।